Bardzo dziękuję. To było inne. Bardzo
सिद्धांत की व्याख्या की है। तो आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि कुछ लोग हैं जो निराकार की उपासना करते हैं और कुछ लोग साकार की उपासना करते हैं, तो इन दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने श्लोक संख्या दूसरे में ये बताया था कि जो मुझमें अपने मन को आवेशित करके मेरी उपासना करते हैं तो वे तेमे युक्त तमामता, वे मुझसे सबसे अधिक जुड़े हुए हैं, सबसे अधिक परम सत्य के निकट पहुँचे हुए हैं, भगवान ने बतलाया था। और इन दो श्लोकों में, आज के दो श्लोकों में भगवान तू शब्द का प्रयोग करें, किंतु एक दूसरा भी रास्ता है, एक दूसरे रास्ते से भी लोग चलते हैं परम सत्य को प्राप्त करने के लिए, एक दूसरा भी रास्ता है। तो इसमें भगवान ने जो निराकार तत्व है उसके लिए आठ शब्दों का प्रयोग किया है, अक्षर, अनिर्देश, अव्यक्त, सर्वत्र, गम, अचिंत्य और कूटस्थ, अचल, ध्रुव। तो ये आठ शब्द हैं जिनमें से पांचों में तो आ जुड़ा हुआ है, जैसे अक्षर कि वो क्षर नहीं है, अनिर्देश जो निर्देशित नहीं होता, अव्यक्त जो व्यक्त नहीं होता, अचिंत्य जो चिंतन से परे, चिंतन में नहीं आता, अचल जो चलायमान नहीं है। तो इसमें आ जुड़ा हुआ है, आ का मतलब है नहीं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इस जो निराकार तत्व है इसका जो वर्णन होता है वो नहीं से होता है, कि नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, है ना, इस तरह से वर्णन होता है, है ना। तो इसमें ज्यादा चर्चा नहीं होती है, जो निराकार की चर्चा है, ये निराकार में कोई गुण नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो इस तरह से जो है मतलब नहीं 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 से वर्णन होता है निराकार का। तो इसमें मतलब ज़्यादा आप बोल ही नहीं सकते। तो ये जो मार्ग है इसीलिए कठिन है क्योंकि इसमें कोई रस नहीं है। जहाँ तक कृष्ण की चर्चा होती है, कृष्ण का गुणगान है, तो इतने शास्त्र भरे पड़े हैं और शेष जी हैं, तो भगवान के गुणगान में अपने हजार मुखों से गुणगान कर रहे हैं और अंत नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ये कहा गया है यो अनंतस्य गुणान अनंतान हरे दिमातुम सतु वाल बुद्धि, कि जो भगवान के गुणों, अनंत गुणों को गिनना चाहता है उसकी बुद्धि बालक की है। रजान से भूमेर विवेक चिंतित तथैव नैवा खिल सतु धामना, तो पृथ्वी के धूल के कणों को कोई गिन ले लेकिन भगवान के गुणों को वो नहीं गिन सकता। तो इस तरह से भगवान के गुणों में रस प्राप्त होता है। लेकिन भगवान बता रहे थे प्राप्त बनती माम एव, वे भी मेरी प्राप्ति करते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। वो शर्त क्या है? सर्वभूत हित रथ, समस्त प्राणियों के हित में रथ। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों के हित में रथ हो तो वो जो है प्राप्त करता है। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि ईर्ष्या, किसी प्राणी के प्रति ईर्ष्या को छोड़ना होता है, सब प्राणी के प्रति समान भाव रखना होता है और उनके हित में कार्य करना होता है। लेकिन बड़ा मुश्किल है, सब लोगों के हित में कार्य करना बड़ा मुश्किल है, सब लोगों को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, इनको खुश करें तो ये नाराज हों, ये इनको खुश करें तो ये नाराज हों, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भक्त होते हैं तो उनकी श्रद्धा है भगवान में, श्रद्धा प्रयोग भगवान में श्रद्धा है, और भगवान में श्रद्धा होने से वो जानते हैं कि अगर मैंने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, तो कितना आसान है। समस्त प्राणियों को खुश करना एक तरफ है, बड़ा मुश्किल है, और दूसरी तरफ है केवल कृष्ण को खुश करो सब अपने आप खुश हो जाएंगे। तो इसलिए वो जो रास्ता है वो बहुत आसान है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई विधि पूर्वक इस रास्ते में चलता है तो कृष्ण की शरण में आता है, और प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में। और सातवें अध्याय के 19वें श्लोक का जो अनुवाद है वो लिखा है कि बहुत जन्मों के अंत में कोई व्यक्ति जो है मेरे शरण में आता है और समझ पाता है कि कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, है ना। तो इसका उदाहरण है मधुसूदन सरस्वती, एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जो कि पहले निराकार की उपासना करते थे, और निराकार की उपासना करते करते फिर वे कृष्ण की भक्ति में जब आए तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है अद्वैत विधि पथे के रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन के नाम पे वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। तो उस श्लोक का अर्थ ये है कि अद्वैत विधि पथे के रूपास्या, कि हमने अद्वैत मार्ग में चल करके जो है इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया था, यानी निराकार की उपासना में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया था कि स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, हमने अपने स्वराज्य का सिंहासन प्राप्त कर लिया था, बहुत ऊंचे सिंहासन पर हम बैठ गए थे। उस निराकार की उपासना में जो है हम बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए थे, लेकिन सठेन के नापी भयम हटेन, लेकिन कोई गोप वधु का कोई बालक है
जो बड़ा दुष्ट है,
गोप वधु का एक बालक है जो बड़ा दुष्ट है, और उसने क्या किया, हठ पूर्वक उसने हमें अपना दास बना लिया है। तो इस प्रकार से बहुत से उदाहरण हैं जो कि पहले निराकार की उपासना करते थे और बाद में फिर कृष्ण की भक्ति में आ गए। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे तो निराकार की उपासना करते थे, लेकिन उससे जब शुद्धिकरण उनका हो गया तो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को सुनने से ही उनकी जो है निराकार की जो धारणा है वो समाप्त हो गई और कृष्ण के प्रति जो है आकर्षण पैदा हो गया। एक श्लोक सुना श्रीमद् भागवत का, है ना, और वो जो है फिर अपना जो निराकार का ध्यान है उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया और कृष्ण के जो है उस रूप के प्रति इतने आसक्त हो गए कि फिर अपने पिता से श्रीमद् भागवत के सब श्लोक उन्होंने सीखे, है ना। चार कुमार भी इसी प्रकार से थे, वो निराकार की उपासना करते थे लेकिन जब वैकुंठ में गए और भगवान का वो रूप देखा तो फिर जो है उन्होंने भगवान की भक्ति स्वीकार की। उन्होंने फिर ये कहा कि अब चाहे हमें नरक में चाहे आप भेज दीजिए, लेकिन आपके चरणों की तुलसी की सुगंध है वो हमें मतलब प्राप्त होती रहे तो हम नरक में भी जो है हम सुखी हैं, अब हमको निराकार की उपासना नहीं करना है। तो इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं, तो भगवान जो बता रहे हैं कि वो मेरी भक्ति में आते हैं। तो यहाँ पर फिर निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर इतनी लंबी मतलब विधि के द्वारा, इतनी कठिन विधि के द्वारा अगर आपको कृष्ण की भक्ति में ही आना है तो फिर समय क्यों खराब किया जाए, तो आप सीधे ही कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो यही है कि हम सीधे कृष्ण की भक्ति करें और कृष्ण की शरण लें। हरे कृष्ण।